डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान 12 रोमियो 10:33 से 12:13 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 10:33 से 12:13 पर 17:12 है। हम रोमन अध्याय 11 को समाप्त कर रहे थे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यह आंशिक रूप से इस बात से तय होता है कि रोमन में प्राकृतिक ब्रेक कहाँ आते हैं, लेकिन यह आंशिक रूप से वीडियो के लिए उचित मात्रा में ब्रेक से भी तय होता है। लेकिन रोमियो अध्याय 11 श्लोक 30 से 32 पूर्ववर्ती खंड के विषयों का सारांश प्रस्तुत करता है, जहां इसराइल और अन्य जातियों ने अवज्ञा के नियमों का आदान प्रदान किया ताकि सुसमाचार हर किसी तक पहुंच सके। अब यहां एक प्रश्न है जो शायद कुछ लोगों के मन में आया होगा, अर्थात जब आपने मुझे रोमियो अध्याय 2 में सुना था तो शायद आपने सोचा होगा कि मैं एक अनुबंधित धर्मशास्त्री था और व्यवस्थावादियों ने देखना छोड़ दिया था। और फिर रोमियो अध्याय 11 में शायद आपने सोचा कि मैं एक युगवादी था और फिर वाचा के धर्मशास्त्रियों ने देखना बंद कर दिया। शायद अब कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उम्मीद है कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा क्या यह व्यवस्थावाद है या यह अनुबंधित धर्मशास्त्र है। और जब मैं रोमियो अध्याय 9 में था तो आपने कहा होगा, क्या यह कैल्विनवाद है या आर्मिनियनवाद। वास्तव में मेरा एक मित्र था, उसने कहा, आपकी रोमन्स टिप्पणी में आप एक तरह से तटस्थ थे, तुम्हें नहीं होना चाहिए था, आपको मुझसे सहमत होना चाहिए था। लेकिन मैं बिल्कुल तटस्थ रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस उस पाठ का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा था जहां वह जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि काम पूरा हो जाने पर हम विभिन्न पाठों में एक साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। मेरा मतलब है, मुझे बाइबल धर्मशास्त्र और अंतःव्यवस्थित धर्मशास्त्र और देहाती अनुप्रयोग और उन सभी चीजों की परवाह है। लेकिन उन तक पहुंचने से पहले जब हम बाइबल की किताब का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि यह किताब हमें क्या सिखाती है, और इसलिए मैं यहीं से शुरू करता हूं। और मैं वास्तव में अनुबंधित धर्मशास्त्र, युगवाद या विशेष रूप से किसी अन्य चीज के लिए बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं पाठ के प्रति वफादार रहने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर पाठ हमें कहां ले जाता है और आप इसे अन्य पाठों के साथ जोड़ते हैं और आप उन्हें एक साथ रखते हैं, यही हम मानते हैं। और अगर यह किसी के सिस्टम में फिट नहीं बैठता है और हमें इसे समायोजित करने के लिए एक बड़ी प्रणाली की आवश्यकता है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई और नहीं है तो ठीक है, मैं सिर्फ पाठ की व्याख्या कर रहा हूं और आप यह पता लगाएंगे कि आप इसे एक साथ कैसे रखना चाहते हैं। लेकिन किसी भी मामले में रोमियो 11 श्लोक 33 से 36 में हमारे पास एक अंतिम स्तुतिगान है। एक खंड को समाप्त करना आम बात थी और यहां रोमियो 9 से 11 को समाप्त करते हुए एक खंड को उत्तेजक बयानबाजी के साथ समाप्त करना और विशेष रूप से इस तरह से एक पुस्तक को समाप्त करना आम बात है। लेकिन आप भी अक्सर भाषणों आदि के कुछ हिस्सों को सारांश के साथ या किसी प्रकार की उत्तेजक बयानबाजी के साथ समाप्त करते होंगे। खैर, स्तुतिगान निश्चित रूप से उत्तेजक बयानबाजी है। यह उस चीज का उपयोग करता है जिसे उत्कृष्टता की अलंकार कहा जाता है, कम से कम वही है जिसे अलंकारकर्ता कभी कभी भव्य अलंकार कहते हैं, और कभी कभी यह काव्यात्मकता पर भी सीमाबद्ध हो सकता है। अब जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि पॉल के लेखन में जो कुछ चीजें हैं वे पॉलिन पूर्व भजन हैं और उनमें से कुछ निश्चित रूप से पॉलिन पूर्व सामग्री हो सकती हैं, लेकिन हमें ऐसा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉल स्तुतिगान या भव्य बयानबाजी में चूक करने में सक्षम था। कभी कभी आप परमेश्वर के वचन के बारे में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है, और मुझे लगता है कि पॉल के साथ यहाँ और कुछ अन्य स्थानों पर भी यही हुआ है। वह भगवान की पूजा कर रहा है और इस भाषा का उपयोग करता है जो लगभग काव्यात्मक है, जिस तरह से हम इसे देखते हैं, ग्रीक मीटर के साथ नहीं, ऐसा कहने के लिए, लेकिन सिर्फ बहुत ही उत्तेजक बयानबाजी। अध्याय 11 और पद 34 वह यशाया 40 और पद 13 के यूनानी अनुवाद से उधार लेता है, प्रभु के मन को किसने जाना है, और निस्संदेह हिब्रू कहता है, प्रभु की आत्मा को किसने जाना है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 2:16 यह पूछता है और फिर कहता है, परंतु हमारे पास मसीह का मन है क्योंकि हमारे पास आत्मा है। हमने अध्याय 8 में इसके बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ यह रोमियो 12:02 के लिए जो आने वाला है उसकी तैयारी भी है, जहाँ यह हमारे दिमागों के नवीनीकरण के बारे में बात करता है। प्रभु के मन को किसने जाना है? खैर 1 कुरिन्थियों 2 वह कहता है, प्रभु के मन को किसने जाना है। आह, लेकिन हमारे पास मसीह का दिमाग है। और यहाँ भगवान के मन को किसने जाना है? प्रभु की आत्मा को किसने जाना है? लेकिन वह हमारे दिमाग के नवीनीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं, और यह हमें दिखाता है कि हमारे दिमाग के नवीनीकरण का एक पहलू इतिहास पर भगवान के दृष्टिकोण को रखना है, इतिहास में भगवान के शक्तिशाली कार्यों पर, इसे एक धार्मिक लेंस के माध्यम से देखना, जैसा कि इस मामले में हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक दूसरे से सहमत होते हैं, बस एक धार्मिक नजरिया रखते हैं, लेकिन किसी भी मामले में 11:35 वह अय्यूब 41:11 से उद्धरण देता है, जो हर जगह पॉल से आने वाले धर्म ग्रंथ हैं, और अंत में वह श्लोक 36 समाप्त होता है, जो मेरे विचार से सभी रोमियों और शायद सभी धर्मग्रंथों में सबसे उत्तेजक छंदों में से एक है, क्योंकि उससे और उसके माध्यम से और उसके लिए सभी चीजें हैं। ईश्वर वास्तव में संप्रभु है। अब प्राचीन लेखक अक्सर अरस्तु के बाद से अक्सर विभिन्न प्रकार के कार्यकारण के संदर्भ में सोचते थे। कभी कभी हमें आज समस्या होती है क्योंकि कोई कहेगा, अच्छा, यह भगवान के कारण नहीं हुआ, यह इस प्राकृतिक घटना के कारण हुआ। या कभी कभी लोग सृष्टि की चीजों को भी उसी तरह देखते हैं, लेकिन प्राचीन विचारक और वास्तव में अक्सर मध्यकालीन विचारक कार्यकारण के कई स्तरों के संदर्भ में सोचते थे। विभिन्न प्रकार के कारण थे। वे उसके बारे में ऐसे बोल सकते थे जैसे ईश्वर ही इसका स्रोत हो, उसके माध्यम से ईश्वर उसके लिए या उसके लिए मध्यस्थता करने के संदर्भ में इसे घटित कराता है, लेकिन अंततः यह एक दूरसंचार कारण है, इसी वजह से ऐसा किया गया है। इसलिए विभिन्न प्रकार के कारणों के लिए अलग अलग पूर्व सर्गों का उपयोग किया गया, और पॉल यह दिखाने के लिए ऐसे विभिन्न पूर्व सर्गों का उपयोग करता है कि ईश्वर इस प्रक्रिया में हर तरह से है। पॉल अपने लोगों और राष्ट्रों के इतिहास में ईश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करता है, जैसा कि हम इस खंड में देखते हैं, और अपनी रोमन टिप्पणी से उद्धृत करने के लिए, मैं अपनी टिप्पणियों से उद्धृत करने का कारण यह नहीं है कि मेरी टिप्पणियां सबसे गहन हैं, फिर मेरी रोमन टिप्पणी बहुत छोटी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मुझे पावरपॉइंट पर काम करने से बचा लिया। पॉल कुछ ऐसा कह रहा है जैसे ईश्वर ने सभी चीजों को लिखा है, और वह एक आवश्यक एजेंसी है जिसके माध्यम से वे घटित होती हैं, और अन्यत्र हम देखते हैं कि यह यीशु के माध्यम से है, और अंत में ये सभी चीजें परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगी। अब इसके साथ हम रोमियो 12 की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉल कुछ धार्मिक अंतर्दृष्टि को लागू करने के लिए तैयार हो रहा है जिसे वह प्रस्तुत कर रहा है। रोमियो 12:02, मैं उस पद पर बहुत समय व्यतीत करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे पहले ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस युग के ढर्रे का अनुसरण न करें, इसके बजाय अपने दिमाग को नया बनाकर रूपांतरित हों। इस तरह आप यह मूल्यांकन करने के योग्य होंगे कि क्या अच्छा, सुखदायक और उत्तम है, और इस प्रकार आप ईश्वर की इच्छा को पहचान सकेंगे। कुछ कारण हैं जिनसे मैंने इसका इस तरह अनुवाद किया है, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं उसके अलग अलग हिस्सों को तोड़ूंगा तो आप उन्हें और अधिक देखेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ जो है वह अनुप्रयोग के लिए एक संक्रमण है। पॉल अपने लेखों में अक्सर ऐसा करता है। धार्मिक आधार तैयार करने के बाद वह आवेदन पर जाता है। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:5 वह चीजों को लोगों के व्यवहार पर लागू करता है। यहां तक कि मुझे लगता है गलातियों 5:6 में अधिक स्पष्ट रूप से वह ऐसा कर रहा है। मेरा मानना है कि वह वही काम यहां रोमन में भी कर रहा है। प्रथम कुरिन्थियों वह इसे हर तरह से करता है, लेकिन ऐसे कारण हैं कि वह अपने पत्रों को उसी तरह से संरचित करते हैं जैसे वह करते हैं। अब कभी कभी लोग सोचते हैं, ठीक है, अगर भगवान मुझे सजा नहीं देंगे तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही व्यवहार करूंगा, और यही औचित्य है जो वास्तव में बात से चूक जाता है। वास्तव में यह चीजों को देखने का कोई बहुत नैतिक रूप से विकसित तरीका नहीं है। नैतिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास के एक निश्चित चरण में सजा एक निवारक है। आप इसे दूर कर दें, ठीक है, फिर वे धीरे धीरे दोबारा ऐसा न करना सीख जाते हैं, लेकिन अंततः वे दूसरों के बारे में सोचना सीखते हैं, और नैतिक विकास के उन्नत चरण में वे अधिक परोपकारी बन जाते हैं, क्योंकि वे सही हैं। आप लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं क्योंकि लोगों को मदद की जरूरत है। और पॉल ने विश्वास द्वारा औचित्य के बारे में बात की है, लेकिन वह चाहता है कि हम सही तरीके से जिएं। हमें धर्मी बनाया गया है, हमारी एक नई पहचान है, इसलिए अब हमें नए लोगों की तरह जीने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हम दंडित होने से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम मसीह में हैं। अपने शरीरों को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना 12:01। खैर, हमने पहले बताया था कि शरीर का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। यहां शरीर को भगवान के सामने बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना इसका उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है। पहले की चेतावनियों के बावजूद पॉल मानता है कि शरीर का उपयोग भलाई के लिए किया जा सकता है। इससे पहले 6:13-19 में उन्होंने हमारे शरीर को हापला के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही थी, जिसका अर्थ हथियार हो सकता है। वह इसे संभवतः रोमियो 13 में सैन्य अर्थ में या भगवान के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करने जा रहा है। खैर, यहां और शायद 6 में यह सिर्फ उपकरण थे, लेकिन यहां भी हम अपने शरीर को भगवान के सामने पेश कर रहे हैं। और अंततः इस संदर्भ में हमारा शरीर उसके शरीर की सेवा में होना है, 4:6। वह हमारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने की बात करते हैं। खैर, पुजारी बलिदान प्रस्तुत करते हैं। हम यहां पुजारी हैं जो स्वयं को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसे संशोधित करने के लिए वह 3 विशेषण देते हैं, सजीव, पवित्र और स्वीकार्य या मनभावन। खैर, इनका क्या मतलब है? बलिदानों को किसी देवता के लिए स्वीकार्य या प्रसन्न माना जाता था, और हमारे पास वह भाषा है जो पवित्र शास्त्र में एज्रा 6:10, यशायाह 56:7, यिर्मयाह 6:20 में बलिदानों पर लागू होती है, और पॉल ने आलंकारिक बलिदान के लिए कहीं और उस भाषा का उपयोग किया है। फिलिप्पियों 4:18 में फिलिप्पियों द्वारा पॉल को दिया गया उपहार ईश्वर को प्रसन्न करने वाला एक बलिदान है। बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। उन्हें भी पवित्र होना था। हमारे पास पुराने नियम में कुछ उदाहरण हैं, जैसे लेव्य व्यवस्था 2:3-10, जहां बलिदान को पवित्र कहा गया है। लेकिन एक बार जब कोई बलिदान भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वह भगवान को समर्पित हो जाता है। यह पवित्र है। ठीक है, हमें अपने शरीरों को ईश्वर को इस तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो उन्हें प्रसन्न करे, जैसे पुराने नियम में कुछ बलिदानों की मीठी महक वाली सुगंध को ईश्वर को प्रसन्न करने वाला कहा जाता है, और साथ ही वह पवित्र है जो ईश्वर को समर्पित है। हम इसीलिए बने हैं। आइए अनंत काल के प्रकाश में हम जिसके लिए बने हैं उसके लिए जिएं। और बलिदान है जीवित रहना। अब यह एक विरोधाभास की तरह है। लोग ऑक्सीमोरोन के विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं, जैसे बहुत सारे हास्यप्रद उदाहरण, लेकिन ऑक्सीमोरोन वह है जहां आप दो शब्दों का एक साथ उपयोग करते हैं जिन्हें आम तौर पर एक साथ विरोधाभासी माना जाएगा। एक जीवित बलिदान। अब आपके पास अनाज का प्रसाद और ऐसी ही चीजें थीं। आपके पास अजाजेल बकरी भी थी। लेव्य व्यवस्था 16 में आपके पास 2 बकरियां थीं और एक को आजाद कर दिया गया है। लेकिन आम तौर पर जब लोग जीवित बलिदान के बारे में सोचते हैं, तो यह एक प्रकार का विरोधाभास है। लेकिन हमारे लिए हम अभी भी जीवित हैं, और यह एक बलिदान है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। मेरा मतलब है, हम मसीह के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, जो अंततः एक अन्य प्रकार का बलिदान हो सकता है, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारा बलिदान इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे जीते हैं। और यह एक तर्कसंगत बलिदान होना है। प्राचीन काल में कुछ लोग आध्यात्मिक बलिदानों की बात करते थे। बेशक पुराने नियम के साथ साथ नए नियम में भी आपके पास बहुत सारी आलंकारिक बलिदान भाषा है। हे प्रभु, आपको जिस बलिदान की आवश्यकता है वह एक टूटी हुई और टूटी हुई आत्मा है। आपके पास भजन 51:17 है। आपके पास नीतिवचन 21:03 है। आपके पास अमोस अध्याय 5 भी हैं, जहां भगवान कहते हैं कि वह उनके बलिदानों और उनके नए चंद्रमाओं आदि का तिरस्कार करता है। और वह वास्तव में जो चाहता है वह यह है कि न्याय को पानी की तरह बहने दिया जाए और धार्मिकता को हमेशा बहने वाली धारा की तरह बहने दिया जाए। यशाया अध्याय 1:58 इत्यादि। लेकिन यहां इसके साथ जो विशेषण लगता है वह लॉजिकोस बलिदान है। अब कुछ संदर्भों में लॉजिकोस का अर्थ आध्यात्मिक हो सकता है। दरअसल 1 पत्रस अध्याय 2 में जहां यह लॉजिकोस की बात करता है, संभवतः इसका उपयोग 1 पत्रस अध्याय 1 के अंत में उसने जो कहा था उससे जुड़ने के लिए भी किया जाता है, जहां यह भगवान के वचन की बात करता है, और इसलिए यह वहां के लोगों से संबंधित है। लेकिन किसी भी मामले में इसका मतलब तर्कसंगत या दिमाग से संबंधित लोगों से संबंधित कारण भी हो सकता है, और यह यहां मुद्दा हो सकता है क्योंकि वह पद 2 में मन के बारे में बात करने वाला है। अब जब आपके पास किसी शब्द की शब्दार्थ सीमा होती है, तो कभी कभी जिसे हम विभिन्न तत्वों पर विचार करते हैं वह मूल भाषा में खत्म हो सकता है। इसलिए आप आवश्यक रूप से आध्यात्मिक और तर्कसंगत को उतना अलग नहीं कर सकते जितना हम करेंगे। लेकिन किसी भी मामले में स्टोक्स ने तर्कसंगत बलिदान देने की बात की जो कि जनता के अंधविश्वासों के अनुसार नहीं थे, लेकिन वे बलिदान थे जहां आपने तर्क दिया। यही वह चीज है जो देवताओं को प्रसन्न करेगी। खैर, श्लोक 2 और 3 में यह मन के बारे में बात करने जा रहा है। तो यह हमारे कारण से है। हमारे दिमाग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम यह पता लगा सकें कि ईश्वर वास्तव में क्या चाहता है, और इस तरह हम अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमें दिखाता है कि भगवान की सेवा करने के लिए अपने शरीर का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। जिस प्रकार हमारे शरीर का उपयोग ईश्वर के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे मन का उपयोग ईश्वर के लिए किया जा सकता है। और इसलिए 12 से आरंभ तक यह अनुरूप होने के विपरीत रूपांतरित होने की बात करता है। दुनिया के अनुरूप दार्शनिकों ने कहा कि जनता के अनुरूप मत बनो, वे मूर्ख हैं। बेशक जनता के पास दार्शनिकों के बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं थे। यहूदी संतों ने कहा कि अन्य जातियों के अनुरूप मत बनो। खैर, इसके बजाय हमारे पास एक परिवर्तित दिमाग होना चाहिए। पॉल अन्यत्र कहता है, यह उस पूर्ण परिवर्तन की बात करता है जिसे हम मसीह की वापसी पर अनुभव करने जा रहे हैं, जब हम पूरी तरह से मसीह के अनुरूप हो जाते हैं। 8:29 या फिलिप्पियों 3:21, जब हमारे शरीर उसके शरीर के समान बन जाते हैं, गौरवशाली शरीर। फिलिप्पियों 3:10 उसके कष्टों के अनुरूप है। लेकिन यहां भी यह रूपांतरित हुआ, यह अनिवार्य है, और यह एक निष्क्रिय अनिवार्यता है जो काफी असामान्य है, लेकिन शायद इसका मतलब यह है कि यह भगवान की कार्रवाई है। ईश्वर ही हमें बदल रहा है। अपने मन के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाएं। वस्तुतः यह कहता है, इस युग के अनुरूप मत बनो आयन। यह ब्रह्मांड जगत नहीं, आयन जगत है। मुझे क्षमा करें, उम्र, और इसलिए हमारे पास नए युग और पुराने युग के बीच एक अंतर है। अब आपको याद होगा कि यह पॉल के लेखन में बहुत आम है, वर्तमान दुष्ट युग, गलातियों 1:04 बनाम भविष्य, यहूदी विचारों में यह हर जगह मौजूद है। वर्तमान युग और भविष्य, ईश्वर के शासन और पूर्ण शांति और न्याय के समय और आत्मा के शासन और मसीहा इत्यादि के बीच विरोधाभास। ठीक है, पॉल में हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन वह वर्तमान युग के ज्ञान की बात करता है, 1 कुरिन्थियों 1:20, 2:06 और 8:3-18। वह इस युग के ईश्वर की बात करता है, 2 कुरिन्थियों 4:04, और हमने इस वर्तमान युग से मुक्ति का उल्लेख किया है, गलातियों 1:4। हमने पहले भी 1 कुरिन्थियों 2, 2 कुरिन्थियों 1 और 5 का उल्लेख करते हुए पूर्वानुभव के रूप में आत्मा के बारे में बात की थी। इसके अलावा आपके पास यह है कि एहबोन शब्द के साथ नहीं, लेकिन फिर से भविष्य के लिए हमारी आशा आत्मा के हमारे अनुभव पर आधारित है, गलातियों 5:05 में। इसलिए इस युग के अनुरूप न बने, बल्कि एक नए युग के लिए अपने दिमाग को नवीनीकृत करके रूपांतरित हों, न कि उस अर्थ में नया युग जिसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं, बल्कि वादा किए गए विश्व के अर्थ में नया युग आना। नए युग के लिए नवीनीकरण। यहां नवीनीकरण करते हुए, यह एक ऐसा शब्द है जो नए शब्द से संबंधित है। वह पहले भी इस शब्द का प्रयोग करता रहा है, आत्मा में नया जीवन। हमें पुराने व्यक्ति से छुटकारा मिल गया है। खैर, इसमें सोचने का एक नया तरीका, एक नया विश्व दृष्टिकोण, चीजों को इस दृष्टिकोण से देखना कि वे अनंत काल से कैसे दिखेंगी या आने वाली दुनिया से कैसे दिखेंगी शामिल है। क्या हमने अपने समय का उपयोग किया? क्या हमने अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जिससे ईश्वर के शाश्वत उद्देश्यों का सम्मान हो? अब से 10 लाख साल बाद क्या हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने आज का दिन कैसे बिताया और कहेंगे, मैंने आज का दिन इस तरह बिताया जिससे मेरे पिता की महिमा हो। पॉल इस नए विश्व दृष्टिकोण के बारे में 2 कुरिन्थियों 5:16-17 में भी बात करता है, ताकि यह समझ सके कि इससे उसका क्या मतलब है। वह कहते हैं, आप जानते हैं, अब मसीह में हम चीजों को उस तरह नहीं देखते जैसे हम पहले देखते थे। हम मसीह को उस तरह से भी नहीं देखते जैसे हम देखते थे। हम हर चीज को नए तरीके से देखते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें बीत चुकी हैं, नई चीजें आ चुकी हैं और नया युग इतिहास में दर्ज हो चुका है। और क्योंकि हम मसीह में नए प्राणी हैं, हम एक नई सृष्टि का पूर्वाभास कर रहे हैं। हम इस युग में रहते हैं, लेकिन हम इस युग में भविष्य के युग के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, ताकि हम यीशु के शब्दों में नमक और प्रकाश हों। हम यहाँ इस दुनिया में राज्य के लिए बदलाव लाने के लिए हैं। हम इस दुनिया का मूल्यांकन करते हैं और अनंत काल के प्रकाश में रहते हैं। और वह अध्याय 13:11-14 में इससे अधिक निपटने जा रहा है, जहाँ हे अब और मत सो। वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन आ रहा है। तुम्हें मालूम है रात लगभग कट चुकी है। उस दुनिया की तरह मत जियो जो अंधेरे में सोई हुई है। एक नई दुनिया आ रही है। हम मसीह के साथ उगे हुए पहले फल हैं। हमारी पहचान उसी में है, और इसलिए हमें अनंत काल के प्रकाश में जीने की जरूरत है। यदि इस बारे में कोई प्रश्न है कि रोमियों 13:11-14 का क्या अर्थ हो सकता है, तो 1 थिस्सलुनीकियों 5:2-9 के प्रकाश में, जिसे पॉल ने पहले लिखा था, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह अनंत काल के प्रकाश में रहने और प्रभु के प्रकाश में रहने के बारे में बात कर रहा है। अरहा प्रभु की वापसी के विवरण पर ईसाइयों के अलग अलग विशेष विचार हैं, लेकिन जिस बात पर हम सभी सहमत हो सकते हैं वह यह है कि हमें इसके आलोक में जीने की जरूरत है। हमें प्रभु की वापसी के प्रकाश में, अनंत काल के प्रकाश में जीने की जरूरत है। मैं जो दुखद देखता हूँ वह यह है कि जहाँ चर्च के पास आज सबसे अधिक संसाधन हैं, जहाँ चर्च को सताया नहीं जाता है, जहाँ चर्च काफी आराम से रह रहा है, हम अक्सर उन संसाधनों को खुद पर आंख बंद करके बर्बाद कर देते हैं, एक ऐसे मिशन की उपेक्षा करते हैं जो शाश्वत मूल्य का है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अनंत काल के प्रकाश में गिना जा सकता है। अब मैं इसे सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने का प्रयास करता था, और मैं इसका सुझाव नहीं दे रहा हूँ। यह अच्छा विचार नहीं था। हम हर पल होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। धैर्य आत्मा का फल है, लेकिन अपने आप को लगातार भगवान के उद्देश्यों के लिए समर्पित करना, हर चीज को अनंत काल तक महत्व देना। जब मैं अपना डॉक्टरी कार्य शुरू कर रहा था, तब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभव से गुजरा था। मैंने पहले बताया था कि ऐसा लग रहा था कि मेरा मंत्रालय नष्ट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बस प्रिय जीवन के लिए भगवान पर निर्भर था। वास्तव में डॉक्टरी कार्य करने जैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने वास्तव में मेरे लिए यह करने के लिए बाकी सभी दरवाजे बंद कर दिए। मैं पूरी तरह टूट चुका था। प्रभु ने मुझे ऐसा करने का अवसर दिया, और इसलिए ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास $1 था, लेकिन वैसे भी मैं वास्तव में अपने दिल में संघर्ष कर रहा था। मैं एक टूटा हुआ इंसान था, और मेरी मुलाकात जॉन नाम के इस नए व्यक्ति से हुई, और मैं जॉन से एक छात्रावास बाइबल अध्ययन में मिला था, और मुझे नहीं पता था कि वह सिर्फ राजनीतिक रूप से अपना चक्कर लगा रहे थे। वह छात्रावास अध्यक्ष थे, वह छात्रावास में सभी चीजों का चक्कर लगा रहा था। मैंने मान लिया कि वह ईसाई था, लेकिन फिर हमने बात करना शुरू कर दिया और वह वास्तव में निराश हो गया क्योंकि उसका कैल्क परीक्षण विफल हो गया था। उसने कैलकुलस तो पास कर लिया लेकिन इस परीक्षा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और इसलिए हमने बात करना शुरू कर दिया और मैं उसके साथ साझा कर रहा था कि मैं किस बात को लेकर टूट गया था। और बातचीत यूं ही चलती रही और हम बातें करते रहे और मैं देख सकता था कि जॉन को जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह थी वह थे उसके दोस्त। लेकिन मैं यह भी देख सकता था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वास्तव में भगवान की सेवा कर रहा था। और इसलिए मैंने कहा, आप जानते हैं जॉन कौन बड़ा है, 10 लाख या 1? आप जानते हैं उसने अपना कैल्क परीक्षण विफल कर दिया था लेकिन यह गणित आसान था। कौन बड़ा है, अनंतकाल या 1 वर्ष? जाहिर है अनंतकाल। मैंने कहा, जॉन तुम सच में अपने दोस्तों से प्यार करते हो? अनंत जीवन से बढ़कर आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन आप उन्हें वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं देख सकता था कि पवित्र आत्मा उसे छू रहा था। उसने उसी समय मसीह को स्वीकार नहीं किया। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला लेकिन अगले महीने या उसके आसपास पवित्र आत्मा उसके साथ काम कर रहा था और भगवान ने उसे इतनी गहराई से छुआ। वह एक उत्साही ईसाई बन गया और उसने तुरंत अपने 40 दोस्तों को एक साथ बुलाया और उनके साथ मसीह को साझा किया। आस्तिक बनने से पहले वह परिसर में सबसे जंगली बिरादरी की प्रतिज्ञा कर रहा था। तो वह इस जंगली बिरादरी में है। वह उन्हें गवाही दे रहा है। लोग उनका मजाक वगैरह बना रहे हैं लेकिन उन्हें पता चला कि किसी ऐसे व्यक्ति का होना बहुत उपयोगी है जो नशे में न हो, क्योंकि जब किसी को चोट लगती है तो वह नशे में होता है। तुम्हें पता है किसी ने उनके चेहरे पर या गलती से किसी चीज से दरवाजा पटक दिया। खैर, जॉन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें अस्पताल तक ले जा सकता था। तो समय के साथ उसकी गवाही फैल गई। जॉन ने मेरे जीवन में जितने लोगों की तुलना में कहीं अधिक लोगों को एक एक करके मसीह की ओर अग्रसर किया है। लेकिन अनंतकाल के प्रकाश में सोचें तो हम सबसे बड़ा अंतर कैसे ला सकते हैं? आप जानते हैं, मेरे देश में मुझे लगता है कि यह अब अलग है क्योंकि लोग इसे इंटरनेट, वीडियो गेम और इस तरह की चीजों पर खेलकर करते हैं। लेकिन कम से कम कुछ साल पहले औसत अमेरिकी ईसाई, उत्तर अमेरिकी ईसाई, मुझे नहीं पता, दिन में 3-4 घंटे टेलीविजन देखने में बिताते थे। कल्पना कीजिए यदि आपने केवल 40 मिलियन ईसाइयों को लिया और आपने साल के 365 दिनों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे या प्रतिदिन 3 घंटे लिए और आपने 40 मिलियन ईसाइयों को लिया। मैं जानता हूं कि 40 मिलियन से अधिक हैं, लेकिन केवल एक संख्या लेने के लिए। और आपने उन सभी घंटों को हमारे समुदायों की सेवा करने, हमारे पड़ोसियों के साथ मसीह को साझा करने या बस लोगों की जरूरतों को पूरा करने या उस समय को प्रार्थना में बिताने में बदल दिया। क्या आप उस पुनरुद्धार की कल्पना कर सकते हैं जो उससे निकलेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा? अगर हम अनंत काल की रोशनी में रहेंगे तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जो कुछ हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि इसलिए कि हम बदलाव लाने वाले सेवक कैसे बन सकते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि हम में से प्रत्येक को बदलाव लाने के लिए भगवान द्वारा उपहार दिया गया है, जैसा कि पॉल आगे बात करने जा रहा है, क्योंकि वह रोमियो 12 में हमें उपहार दिए जाने के बारे में बात करता है। खैर, यहाँ इस नवीनीकृत दिमाग और पुराने भ्रष्ट दिमाग के बीच एक अंतर है रोमियो अध्याय 1 का। रोमियो 1 मानवता ईश्वर को धन्यवाद देने में विफल रही, 1:21 और अंततः उन्होंने मूर्तियों की पूजा की, 12:3। यहाँ विश्वासी भगवान की पूजा करते हैं, खुद को मूर्तियों के लिए नहीं बल्कि जीवित भगवान के लिए बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं। उन्होंने 124 में अपने शरीरों को भ्रष्ट कर दिया, लेकिन हम अपने शरीरों को 12:01 मसीह के शरीर की सेवा के लिए अर्पित करते हैं, 12:04 या 8। वे वर्तमान युग से संबंधित हैं और यह 11:08 से लेकर 11:08 में क्रियाकाल द्वारा सुझाया गया प्रतीत होता है। 32। हमें इस युग के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे दिमागों को 12:02 में नया बनाया जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उनके मन को भ्रष्ट होने दिया। लेकिन यहाँ भगवान हमारे दिमागों को नवीनीकृत करते हैं ताकि हम उनकी इच्छा को स्वीकार कर सकें। और मैं वहाँ ग्रीक में कनेक्शन के बारे में बात करूँगा। यह अंग्रेजी में भी बिल्कुल नहीं आता है। उनके भ्रष्ट दिमागों ने 12:08 से 31 तक स्वार्थी बुराइयों को जन्म दिया। हमारा नवीनीकृत मन 12:01 से 8 में मसीह के शरीर की सेवा के कार्य करता है। तो अब हम परमेश्वर की इच्छा को समझने के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आपको कभी भी ईश्वर की इच्छा को समझने में कोई समस्या हुई है। कभी कभी मेरे पास होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए वह इस बारे में बात करता है कि हमारे दिमाग नए हो गए हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। 12:02 कहता है, जो व्यक्ति 2:17 से 18 में कानून के बारे में दावा करता है वह सोचता है कि वह भगवान की इच्छा को समझता है, लेकिन यह पता चला है कि वह वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ नवीनीकृत मन वास्तव में ईश्वर की इच्छा को पहचानता है। मुझे लगता है कि वह पत्र में पहले इस्तेमाल की गई भाषा को उद्धृत कर रहे हैं, क्योंकि फिर से जिस तरह से लोग शुरू में रोमन पढ़ते थे, वह यहाँ एक कविता या वहाँ एक कविता नहीं पढ़ रहा था, या यहाँ तक कि यहाँ एक अध्याय या वहाँ एक अध्याय भी नहीं पढ़ रहा था। वे पूरा पत्र एक ही बार में पढ़कर सुना देंगे, और इसलिए वे पहले के हिस्सों के आलोक में बाद के हिस्सों के बारे में सोच रहे होंगे, और संभवतः उन्होंने इसे एक से अधिक बार पढ़ते हुए सुना होगा, और इसलिए अंततः वे इन कनेक्शनों को उठा लेंगे। 128 के भ्रष्ट दिमाग के साथ एक विरोधाभास है। उन्होंने भगवान के सच्चे ज्ञान को बनाए रखने के उसके अधिकार को भाषा अनुमोदन या मूल्यांकन नहीं किया, इसलिए भगवान ने उन्हें एक अस्वीकृत या गलत दिमाग के रूप में मूल्यांकन करने के लिए सौंप दिया जो उचित नहीं था। लेकिन 12:02 में नए मन से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वह यहाँ भी उसी शब्द का प्रयोग करता है। वे नहीं जानते थे क्योंकि वे परमेश्वर को जानना नहीं चाहते थे, और इसलिए वे यह भी नहीं जान सकते थे कि क्या सही था। लेकिन यहाँ हम ईश्वर की इच्छा का मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक नया दिमाग है। तो यह मानवता की भ्रष्ट बुद्धि का उलट है जिसे हम यहाँ अध्याय 12 में देखते हैं। फिर से हम विश्व दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। आप जिन धारणाओं से शुरुआत करते हैं उनसे फर्क पड़ता है, और प्रभु के भय से शुरुआत करने से फर्क पड़ता है। दार्शनिकों और वक्ताओं ने अच्छे और उत्तम जैसे मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग किया। यहाँ मूल्यांकन के बारे में एक छोटा सा कार्टून है। जब मैंने आपसे विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए कहा, तो मेरा मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से नहीं था। मैं अपने सेमिनरी के लिए कभी कभी कार्टून बनाता हूँ जब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। मैं अपना लेखन जारी नहीं रख सकता, इसलिए कभी कभी मैं बिल्कुल बेतुकी चीज की कल्पना करता हूँ। लेकिन फिर भी दार्शनिकों और वक्ताओं ने अच्छे और उत्तम जैसे मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग किया। स्टोइक्स ने कहा कि सर्वोच्च अच्छाई सद्गुण है, जबकि एपिकुरियंस का मानना था कि सर्वोच्च अच्छाई आनंद है। लेकिन इससे उनका तात्पर्य दर्द की अनुपस्थिति से था। लेकिन किसी भी मामले में उत्तम, जिसे हम कभी कभी परिपूर्ण के रूप में अनुवादित करते हैं, उसका मतलब किसी भी क्षेत्र में पूर्ण या परिपक्व हो सकता है। तो आप जानते हैं, अक्सर जब बाइबल परिपूर्णता की बात करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परीक्षा में 100 अंक मिले हैं। हो सकता है कि आपने अपना कैलकुलस परीक्षण भी विफल कर दिया हो, लेकिन जिस क्षेत्र पर विचार चल रहा है उसके भीतर उत्तम साधन हैं। आप पूर्ण या परिपक्व हैं। इसलिए दार्शनिकों ने पहले से ही इन मानदंडों का उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया कि क्या कुछ अच्छा था। वक्ताओं ने वैसा ही किया। उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग किया कि किसी विशेष स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प क्या था। दार्शनिकों के रूप में स्टोइक हमेशा सर्वोत्तम विकल्पों में रुचि रखते थे, मानदंड के रूप में अच्छा, सुखदायक और परिपूर्ण। यहूदियों और अन्य जातियों ने समान रूप से कभी कभी सकारात्मक विशेषणों को पर्यायवाची के रूप में एकत्रित किया। इसलिए यह परमेश्वर की इच्छा के 3 स्तरों को संदर्भित नहीं करता है। जैसे ठीक है, आप जानते हैं, आप उसकी सद्भावना चुन सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर उसकी मनभावन इच्छा चुनें। उससे भी बेहतर उसकी आदर्श इच्छा चुनें। नहीं, यहां बात वह नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के तरीके हैं। यदि कोई चीज अच्छी, मनभावन या उत्तम है, तो यह उसकी इच्छा है। अब मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि ईश्वर हमें अन्य तरीकों से भी ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, मेरे बहनोई एमए मुसुंगा, युद्ध के दौरान एक समय ऐसा था जब वह परिवार से मिलने की कोशिश करने के लिए वापस जा रहे थे, और उसे अपने भीतर अचानक एक इच्छा महसूस हुई, नहीं, उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसे वापस जाना होगा। और कुछ ही क्षण बाद जिस सार्वजनिक बाजार में वह था, उसे गोलियों से भून दिया गया। पवित्र आत्मा के पास हमारा नेतृत्व करने के अतिरिक्त तरीके हैं, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा हमारे दिमागों से निपटता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ भी व्यवहार करता है। आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान, नहेमायाह 7:5, भगवान ने हर किसी को इकट्ठा करने के लिए इसे मेरे दिल में डाला। लेकिन जबकि ईश्वर हमें उस रास्ते पर ले जा सकता है, बुद्धि भी ईश्वर की अगुवाई है। ईश्वर हमें दोनों तरह से मार्गदर्शन कर सकता है। अक्सर वे लाइन में लग जाते हैं, और जब वे कतार में खड़े होते हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है। अन्यथा आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं कि वह आपके कदमों का आदेश देगा। जहां मैं पहले पढ़ाता था, पामर सेमिनरी, मुझे वहां पढ़ाना अच्छा लगता था। मैं अपने विद्यार्थियों से प्यार करता था, लेकिन समय समय पर जगहें मुझे यहां आने की पेशकश करती रहीं। और यदि उन्होंने मुझे शिक्षण का हल्का भार दिया होता, ताकि मेरे पास लिखने के लिए अधिक समय होता, तो मैं शायद इसे उतना ही स्वीकार कर लेता जितना मुझे वहां पसंद था जहां मैं था। लेकिन एक बात ये भी थी, एक जगह ने मुझे कुछ ऑफर किया और यह मेरी 1 साल की कमाई से $30,000 अधिक था, और मुझे इसके बारे में शांति महसूस नहीं हुई। लेकिन मैंने सोचा, आप जानते हैं, यदि आप $30,000 हैं तो मुझे बस इसके बारे में प्रार्थना करने दीजिए। इसलिए मैंने इसके बारे में प्रार्थना की और मुझे एक सपना आया, और सपने में मैंने अपने मित्र बेन विद्रिंगटन से सलाह मांगी। और बेन, मैं क्या भूल गया, मुझे यह भी याद नहीं है कि क्या उसने मुझे सपने में सलाह दी थी। मुझे बस इतना याद आया कि मैंने उससे पूछा था। इसलिए जब मैं उठा तो मैंने कहा, यह कोई बुरा विचार नहीं है। तो मैंने बेन को ईमेल किया और बेन ने कहा, ओह, आपको यहाँ आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ एक उद्घाटन करने वाले हैं। खैर, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं किसी उद्घाटन की तलाश में नहीं था। तो ठीक है, मेरे लिए वहां आने का दरवाजा खुल गया जहां मैं इस समय हूं। और मैं वास्तव में निश्चित नहीं था कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। और मैं आगे पीछे चला गया। और मेरी पत्नी वह प्रार्थना कर रही थी और उसे लगा जैसे भगवान कह रहे थे कि हमें यह करना चाहिए। खैर, पॉल कहते हैं कि हम आंशिक रूप से जानते हैं, हम आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं सुना, शायद आंशिक रूप से क्योंकि मैं पक्षपाती था। लेकिन किसी भी मामले में मैंने वह प्रयास किया जिसके बारे में मुझे शांति महसूस होगी। वास्तव में कभी कभी मुझे किसी एक के बारे में शांति महसूस होती थी। मैंने इन मानदंडों का उपयोग करके विकल्पों को तौलने की कोशिश की। मैं अभी भी इसका पता नहीं लगा सका। और आखिरकार हमें निर्णय लेना पड़ा। और इसलिए आप जानते हैं, इनी मीनी मिनी मो के बजाय मैंने कहा, आप जानते हैं, अगर इसहाक ने रेबेका की बात सुनी होती तो जैकब और एसाव के साथ बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता था। तो मेरी पत्नी ने सुना, मुझे उसके साथ जाने दो। और उसके बाद प्रभु ने मुझे पुष्टियां दी। लेकिन कभी कभी हमें ठीक ठीक पता नहीं होता और हमें बस उस सर्वश्रेष्ठ के साथ जाना है जिसे हम जानते हैं। हम आंशिक रूप से जानते हैं, हम आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन अक्सर भगवान हमें बुद्धि देते हैं और हम जानते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि यह अच्छा है, यह प्रसन्न करने वाला है, यह भगवान की दृष्टि में उत्तम है। हम जानते हैं कि यह काम करेगा और विशेष रूप से यह मसीह के शरीर की उन्नति करेगा। और वास्तव में यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में प्रभु ने पहले हमसे बात की थी। उन लोगों की तलाश करें जिनके पास समान दृष्टिकोण, समान मिशन और दुनिया तक पहुंचने का समान दृष्टिकोण है। और निश्चित रूप से टिम टेनेंट के पास वह है। वह एक और चीज थी जिसने मुझे यहां खींचा। लेकिन जो भी हो, मन के इस नवीनीकरण का साहित्यिक संदर्भ ठीक है, पिछले संदर्भ में हमारे पास ईश्वर का अपना मन है। याद रखें, प्रभु के मन को किसने जाना है? यह केवल कुछ श्लोक पहले की बात है। पॉल रोमनों में उस शब्द का प्रयोग बहुत बार नहीं करता है, लेकिन वह इन दोनों ग्रंथों में केवल एक पैराग्राफ के अंतर पर इसका प्रयोग करता है। इसलिए 12:01 कनेक्शन से शुरू होता है। तो आप जानते हैं, यह पूर्ववर्ती बातों पर आधारित है। वास्तव में यह 9-11 तक सभी पर आधारित है और हो सकता है आप जानते हो 1-11 तक। लेकिन किसी भी मामले में 11:34 में भी आप इतिहास को व्यवस्थित करने में भगवान की बुद्धि को देखते हैं। तो भगवान के मन को किसने जाना है? खैर, जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं, हम इतिहास में भगवान की बुद्धि को देखते हैं। भगवान अपनी कुछ अंतर्दृष्टियां हमारे साथ साझा करते हैं। मेरा मतलब है, जाहिर है, भगवान का ज्ञान अनंत है, लेकिन वह उसमें से कुछ हमारे साथ साझा करता है। जहां हमें इसकी आवश्यकता होती है, उसका कुछ ज्ञान हमारे साथ साझा करता है। बाइबल अक्सर दिव्य ज्ञान रखने की बात करती है, जो 1 कुरिन्थियों से पता चलता है कि वह क्रूस पर केंद्रित है। यह इस पर केंद्रित नहीं है कि संसार किस प्रकार कार्य करता है, बल्कि इस पर केंद्रित है कि ईश्वर किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन निम्नलिखित संदर्भ हमें यह भी दिखाता है कि यह नवीनीकृत दिमाग कैसे सोचता है। यह मसीह के शरीर के लिए एक मन है। सोच का विषय श्लोक 3 में जारी है। यह कहता है, अपने बारे में अनुचित मत सोचो। इसके बजाय गंभीरता से सोचें। अर्थात पहचानो, वह आगे कहता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मात्रा में विश्वास देता है। इसलिए अपने आप पर ऐसा घमंड न करें जैसे कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, और अपने आप को ऐसे बर्बाद भी न करें जैसे कि आप किसी लायक नहीं हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हम में से कुछ के पास एक समस्या है, कुछ के पास दूसरा है, और हम में से कुछ के पास दोनों हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस मनोदशा में हैं। लेकिन उसका क्या मतलब है? भगवान हमें कुछ हद तक विश्वास देता है। वह कुछ छंदों के बाद इसी से मिलती जुलती किसी चीज के बारे में बात करने जा रहा है। यदि कोई भविष्यवाणी करता है तो उसे अपने विश्वास के अनुपात के अनुसार भविष्यवाणी करने दो। इस संदर्भ में कुछ लोग सोचते हैं कि इसे करना ही होगा, विशेष रूप से भविष्यवाणी के बाद के संदर्भ में, कि इसका संबंध इस बात से है कि हमें इसे ईश्वर द्वारा दिए गए माप मानक धर्म ग्रंथ के सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए या सुसमाचार का मूल संदेश। खैर, धार्मिक दृष्टि से यह सच है। मेरा मतलब है, स्पष्ट रूप से ईश्वर उस बात का खंडन नहीं करेगा जो उसने पूरे इतिहास में प्रेरितों और पैगंबरों के माध्यम से कही है, जिनके संदेश का समय के साथ परीक्षण किया गया है, और अन्य जिनके संदेश का समय के साथ परीक्षण किया गया है, और यह न्यूनतम सहमति की तरह है। ऊपर हम इसका उपयोग अन्य चीजों का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। यह सच है, लेकिन इस परिच्छेद में मुझे नहीं लगता कि यह इसी बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यह विभिन्न उपहारों के लिए विश्वास के बंटवारे की बात कर रहा है। यानी भगवान किसी को कुछ इस तरह से उपहार देते हैं। वह इस उपहार में व्यक्त होने वाला एक और विश्वास देता है। वह इस उपहार में व्यक्त होने वाले एक और विश्वास को मापता है, ताकि हम में से प्रत्येक को विश्वास के उपाय दिए जा सकें कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। हम में से कुछ लोग कुछ चीजों में दूसरों से बेहतर हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास ऐसे उपहार हैं कि वाह, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर मेरे साथ यह ऐसा है जैसे मैं धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूं, यह मेरे लिए जीवंत हो उठता है। और धर्म ग्रंथ पढ़ाना, यह सिर्फ एक उपहार है जो मेरे अंदर से बहता है, और वर्षों वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। तो हम सभी के पास अलग अलग उपहार हैं। वैसे मैंने अपनी पत्नी को प्रभु से सुनने का उल्लेख किया। यदि हम फिर से उपहारों के बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने पहले उल्लेख किया था कि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। मेरी पत्नी नहीं करती, लेकिन वह वही है जिसने उस मामले में भगवान से सुना। इसलिए हमारे पास अलग अलग उपहार हैं, और हमें सभी उपहारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे को नीचा नहीं देख सकते। नवीनीकृत मन विचार करता है, मैं मसीह के शरीर में कैसे योगदान दे सकता हूं? भगवान ने मुझे कौन से तरीके दिए हैं? वहां क्या क्या जरूरतें हैं? और जहां हमारे उपहार और शरीर की जरूरतें मेल खाती हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे लिए यही ईश्वर की इच्छा है। इसके लिए आपको किसी अतिरिक्त रहस्योद्घाटन की आवश्यकता नहीं है। जब शरीर में कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई उपहार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप 1 कुरिन्थियों 12:31-14:1 की तरह कर सकते हैं, उस प्रकार का प्रेम अध्याय जो कुरिन्थियों को उन सभी चीजों के लिए डांट रहा है जो वह कहता है कि प्रेम है, कि उसने उन्हें पहले ही पत्र में बता दिया है कि वे नहीं हैं। हम ईश्वर से उपहार मांग सकते हैं। हम उन्हें अपने लिए नहीं खोज रहे हैं। हम उन्हें शरीर के उत्थान के लिए खोज रहे हैं। खैर, आप अपने लिए भी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन विशेष रूप से शरीर के निर्माण के लिए उपहारों की तलाश करें। वे विशेष रूप से इसीलिए हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए, और इसलिए आप ईश्वर से उस उपहार को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वह आपके लिए हो या किसी और के लिए। यदि वह आपको चुनता है तो बस खुले रहें। याद रखें, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे फसल के लिए मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, और उसके तुरंत बाद वह किसे भेजता है? जब वह कहता है कि श्रमिक उनके किराए के योग्य है, तो यह ग्रीक में श्रम के लिए वही शब्द है। मेरे अपने जीवन में मुझे कुछ पुस्तकों से विशेष लगाव रहा है। रहस्योद्घाटन टिप्पणी की तरह मुझे लगा कि मुझे जोंडरवन के लिए रहस्योद्घाटन पर कुछ लिखना चाहिए, और मैंने पहले कभी जोंडरवन के लिए नहीं लिखा था। और क्योंकि मैं अपनी जॉन कमेंट्री पर काम कर रहा था, इसलिए मुझे इसका प्रस्ताव करने का मौका नहीं मिला। और फिर एक दिन जोंडरवन के एक संपादक ने मुझे फोन किया और कहा, हमारे पास इस श्रृंखला में एक शुरुआत है, क्या आप हमारे लिए कोई टिप्पणी लिखना चाहेंगे? यह वह है जिसके बारे में हमें अभी अभी शुरुआत मिली है। और मैंने कहा, ठीक है, आप जानते हैं, मुझे सच में मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा करने का समय है, लेकिन अगर वे मुझसे सिर्फ फिलेमोन या थर्ड जॉन या कुछ और के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा, यह किस किताब पर है? उन्होंने कहा, रहस्योद्घाटन। मैंने कहा, ओह, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं हाँ कह दूं। लेकिन फिर पृष्ठभूमि टिप्पणी जैसी अन्य चीजें मैंने सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि मैंने एक आवश्यकता देखी और भगवान ने मुझे जानकारी दी थी। मुझे ऐसा करने के लिए किसी विशिष्ट नेतृत्व की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि यदि किसी और ने इसे पहले नहीं लिखा है तो इसे करने की आवश्यकता है। मैं यह कर सकता हूं, क्यों नहीं? और इस रोमन टिप्पणी के साथ भी ऐसा ही है। मैं श्रृंखला का सहसंपादक था। जिस व्यक्ति से हमने शुरू में पूछा वह ऐसा नहीं कर सका, और किसी और से पूछने के बजाय मैंने कहा, देखो, मैं किसी दिन एक बड़ी रोमन टिप्पणी लिखने के लिए इस जानकारी को सहेज रहा हूं। मुझे यह जानकारी मिली है। खैर, मुझे बैठकर इस छोटे से लेख को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? तो इस तरह मैंने रोमन्स कमेंट्री की और इसीलिए वे मुझे यह वीडियो करने दे रहे हैं। लेकिन नवीनीकृत मस्तिष्क कैसे सोचता है? खैर, नया दिमाग कैसे सोचता है? यह पहचानता है कि क्या अच्छा है और क्या सही है। हमने इसे 12:02 में देखा। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को एक बड़े संदर्भ में रखता है, मुक्ति के इतिहास का संदर्भ 11:34, प्रभु का मन और मसीह के शरीर का संदर्भ 12:04-6। तो एक बड़ा संदर्भ, भगवान के वचन का संदर्भ, इतिहास में काम करना, और मसीह के शरीर हमारे भाइयों और बहनों, भगवान के लोगों के रूप में हमारे जीवन का बड़ा संदर्भ। मसीह हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारी आत्मा को भी नवीनीकृत करते हैं ताकि हम सर्वोत्तम तरीके से उनकी सेवा कर सकें और इस युग में उनके नाम के लिए, अनंत काल की रोशनी में उनकी महिमा के लिए इस दुनिया में बदलाव ला सकें। 12:9-21 यहाँ हमारे पास वह है जिसे अक्सर पैरानेसिस कहा जाता है। वह केवल उपदेशों की सूची रखने के लिए एक शब्द था। अक्सर इन्हें शिथिल रूप से जुड़े हुए उपदेश माना जाता है, लेकिन एक तरह का कनेक्शन है। जिस तरह से पॉल ने इन्हें व्यवस्थित किया उसमें एक तर्क है। प्राचीन काल में कुछ प्रकार के पैरानेसिस की तुलना में कहीं अधिक। यह बस बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित नहीं है, जैसे कि नीतिवचन की किताब में कुछ कहावते हैं या नीतिवचन की किताब में कई कहावते हैं। आपके पास 12:9-21 का समावेश है जहां इन दोनों छंदों में अच्छाई बनाम बुराई है। खैर 12:9-21 में आप इसे कमोबेश दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। 12:14-21 पूरी तरह से इस तरह नहीं है, लेकिन अपने साथी विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, 12:9-13 और 12:14-21 में उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है जो साथी विश्वासियों नहीं हैं। इसलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि अपने साथी विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करें। 12:10-12 में हम विभिन्न उपदेशों के बारे में सीखते हैं। उनमें से एक है भाईचारे का प्यार, फिलाडेल्फिया। यहीं पर हमने भाईचारे के प्यार के बारे में बात की। दार्शनिक अक्सर इस पर जोर देते हैं। और निश्चित रूप से यदि हम मसीह में भाई बहन हैं तो यह इस बात पर लागू होता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने साथी ईसाइयों के साथ अपने परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करें। ठीक है, अगर कभी कभी आपकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहस होती है, लेकिन आप अभी भी परिवार हैं तो मसीह के शरीर के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन आदर्श रूप से आप जानते हैं, ठीक है, हमने धर्म ग्रंथ के अन्य हिस्सों में अपने स्वभाव और इस तरह की चीजों को नियंत्रित करने और आपके मुंह से जो निकलता है उस पर नजर रखने के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, क्योंकि बाद में आपको इसका पछतावा हो सकता है। इसलिए भाईचारे का प्यार, अपने साथी विश्वासियों के लिए पारिवारिक प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। अपने से ऊपर एक दूसरे का सम्मान करना। अब ध्यान रखें कि प्राचीन भूमध्य सागरीय संस्कृति सम्मान और शर्म पर बहुत जोर देती थी। कई संस्कृतियां ऐसा करती हैं। अधिकांश संस्कृतियों में कुछ मायनों में यह अवधारणा है, लेकिन यहां रोम में सामान्य तौर पर प्राचीन मर्दाना शहरी भूमध्य सागरीय संस्कृति, लेकिन विशेष रूप से रोमन संस्कृति में एक ऐसी संस्कृति थी जहां लोग सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। यह प्रतिद्वंद्विता की संस्कृति थी। परंतु पौलुस कहता है, अपने से बढ़कर एक दूसरे का आदर करो। मैं सोचता हूं कि मैं कभी कभी क्रॉस कंट्री कैसे दौड़ा करता था, और यह मसीह को लोगों के साथ साझा करने में सक्षम होने का अवसर था, क्योंकि हमारा रिश्ता उसी तरह था। लेकिन मुझे याद है कि मैं जो अच्छा करूंगा वह कुछ ऐसा था जिस पर मसीह में मेरे भाई बहन गर्व कर सकते थे, और जब कोई अन्य आस्तिक अच्छा करेगा तो यह कुछ ऐसा था जिस पर मुझे गर्व हो सकता था। हम एक दूसरे के सम्मान में आनंदित हुए। आशा में आनंदित होना और क्लेश सहना। खैर, वह पहले से ही इसके बारे में अधिक विस्तार से अध्याय 5 में छंद 3-5 में बात कर चुका है, आशा में आनंदित होना, क्लेश सहना। और जिस तरह से पॉल ने इसे अलंकारिक रूप से व्यवस्थित किया है वह कानों को बहुत भाएगा। यह कुछ ऐसा है जो लोगों का ध्यान खींचेगा। दोहराव का उपयोग मुद्दे को स्पष्ट करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। और यहाँ ग्रीक में आपके पास श्लोक 10:11 में 3 उपवाक्य हैं जो ओए के साथ समाप्त होते हैं, और आपके पास श्लोक 11-13 में 7 उपवाक्य हैं जो उन्तेस या अंतेस के साथ समाप्त होते हैं। इसलिए यह लोगों का ध्यान बनाए रखेगा या उन्हें भावनात्मक रूप से जगाएगा। श्लोक 13 हमें कुछ और उपदेश देता है, जरूरतमंदों की देखभाल और आतिथ्य सत्कार। खैर, जरूरतमंदों की देखभाल एक ऐसी चीज थी जिस पर पूरे पुराने नियम में पहले से ही जोर दिया गया था। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 15 में भगवान कहते हैं, जब मैं तुम्हें भूमि में समृद्धि दूंगा तो यह सुनिश्चित करना कि तुम जरूरतमंदों की देखभाल करो, क्योंकि तुम्हारे बीच हमेशा गरीब रहेंगे। वह इसी संदर्भ में इस बारे में भी बात करते हैं कि गरीबों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ताकि कोई भी गरीब न रहे लेकिन गरीब हमेशा रहेंगे। इसलिए आपको गरीबों का ख्याल रखना होगा ताकि जरूरतें पूरी हो सकें, ताकि कोई भी गरीब न रहे। गरीब हो जाओगे। दूसरे शब्दों में, जब ईश्वर सामूहिक रूप से जरूरतों की आपूर्ति करता है तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जिन लोगों की जरूरतें व्यक्तिगत रूप से पूरी नहीं होती उनकी जरूरतें उन लोगों द्वारा पूरी की जा सके जिनके पास अतिरिक्त है। पॉल उसी सिद्धांत को उसी तरह बनाता है, जब कोई व्यक्ति जो बाद में देता है उसे जरूरत हो सकती है और कोई उसे दे सकता है। हम मसीह के शरीर के माध्यम से हमें आपूर्ति करने के लिए प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। यह यहूदी प्रथा में एक प्रमुख जोर था। अन्य जातियों में यह बहुत अधिक नहीं था। उन्होंने उपकारकर्ताओं की बात की, लेकिन आम तौर पर उनके उपकार आम तौर पर नागरिक उपकार होते थे, जैसे इमारतों को समर्पित करना आदि, जो बाद में उनके सम्मान में समर्पित किए जाएंगे और उनके सम्मान में एक शिलालेख होगा। लेकिन यहूदी लोगों ने गरीबों को देने पर जोर दिया और यहाँ भी यही स्थिति है। अब मैं इस सवाल में नहीं पड़ रहा हूँ कि गरीबी को बनाए रखने वाली सामाजिक संरचनाओं को ठीक करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं, और ये सभी महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे अधिकांश विश्वासियों के पास पहली शताब्दी में काफी छोटे लेकिन बढ़ते आंदोलन के रूप में निपटने की पहुंच थी। लेकिन जाहिर है, अगर आप गरीबी के मूल मुद्दों से निपट सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। लेकिन निश्चित रूप से जरूरतमंदों की देखभाल की जानी चाहिए। मेहमानवाजी। वैसे मेरे देश में 20वीं सदी की शुरुआत में चर्च में कट्टरपंथियों और आधुनिकतावादियों के बीच विभाजन था। बहुत सारे लोग वास्तव में दो ध्रुवों के बीच में थे, लेकिन आपके पास कट्टरपंथी भी थे जो आस्था के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की 19वीं सदी की इंजील परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। वे कभी कभी अन्य बातों पर असहमत होते थे, लेकिन वे इन पर सहमत थे। हम वास्तविक अलौकिक में विश्वास करते हैं कि भगवान ने चमत्कार किए। उन्हें हमेशा विश्वास नहीं होता था कि वह अब भी विश्वास करता है। ऐसे अन्य ईसाई भी थे जो मानते थे कि कभी कभी उन्हें दोनों समूहों से बाहर रखा जाता था, लेकिन आज तक इसमें काफी बदलाव आया है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने कहा, हम ईसा मसीह के ईश्वरत्व में विश्वास करते हैं, हम कुंवारी जन्म में विश्वास करते हैं, हम यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, इत्यादि। फिर आपके पास अन्य लोग भी थे जो कह रहे थे, ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, कुछ जिन्होंने कहा, हम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि यह तर्कसंगत नहीं है, यह परिष्कृत नहीं है। लेकिन उन्होंने 19वीं सदी के इंजीलवादियों से अन्य चीजें लीं और उन्हें धर्म ग्रंथों में गरीबों की देखभाल करना, अपने पड़ोसियों से प्यार करना आदि के बारे में भी सिखाया गया। कभी कभी कट्टरपंथी और आधुनिकतावादी एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। दरअसल कट्टरपंथी आधुनिकतावादियों के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे, चलो मूल चीजों की ओर लौटें। 1940 के दशक के आसपास और बीच में कुछ लोग थे, लेकिन 1940 के दशक के आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने कहा, जैसे बिली ग्राहम और कुछ अन्य जिन्होंने कहा, आप जानते हैं, वास्तव में बाइबल इन दोनों को सिखाती है। यह आस्था के इन बुनियादी सिद्धांतों को सिखाता है। यह गरीबों की देखभाल, सामाजिक जुड़ाव आदि भी सिखाता है। कभी कभी हमारे पास आज भी वह विरासत है जहां कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वे गरीबों की देखभाल करने के बारे में संदेह करते हैं या बाइबल द्वारा सिखाई गई कुछ अन्य चीजों पर विश्वास करने के बारे में संदेह करते हैं। बाइबल ये सब बातें सिखाती है। हमें इसका मनमाना विभाजन सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि कुछ चर्च परंपराएं ऐसा करती हैं। कुछ अन्य चर्च परंपराओं ने कभी भी यह भेद नहीं किया। अमेरिका में अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी चर्च उस परंपरा को बनाने में सक्षम नहीं थे। उस मुद्दे पर कैथोलिक सामाजिक शिक्षण संतुलित रहा है। किसी भी मामले में सब कुछ एक साथ लाने के लिए, कभी कभी जब मैं विवादास्पद मुद्दों के बारे में बोलता हूँ तो मैं शायद इससे अधिक परेशानी पैदा करता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ को यह भी नहीं पता था कि इन चीजों पर बहस हुई थी। किसी भी मामले में आतिथ्य सत्कार पूरे भूमध्य सागरीय पुरातन काल में एक व्यापक मूल्य था, खासकर यहूदी धर्म में। यह हर जगह था, लेकिन यहूदी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि विशेष रूप से साथी यहूदियों के लिए यह इतना आगे बढ़ गया कि इसमें साथी यहूदी यात्रियों के लिए आवास भी शामिल था, कभी कभी आराधनालय में, अक्सर अपने घर में। अब जाहिर तौर पर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आप सावधान रहना चाहेंगे कि आपने किसे शामिल किया, लेकिन अक्सर लोग किसी ऐसे व्यक्ति के सिफारिश पत्र लेकर आते हैं जो पहले के शहर में भरोसेमंद था। अक्सर वे लोगों को 3 सप्ताह तक के लिए ले जाते थे। अब आज ऐसी संस्कृतियां हैं जो आतिथ्य को महत्व देती हैं। कैमरून में जब मेरी मंगेतर, अब मेरी पत्नी, युद्ध से बाहर आई तो वह लगभग 8 महीने तक कैमरून में एक परिवार मुमास के साथ रही। हम उनके द्वारा दिखाए गए आतिथ्य के लिए और हमारे मित्र शार्लेमेन के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इसे स्थापित करने में मदद की। लेकिन आतिथ्य सत्कार पर एक बड़ा जोर था और ईसाइयों को भी इसे दिखाना था। खैर, हमने एक दूसरे से प्यार करने और एक दूसरे की सेवा करने के बारे में बात की है। अब हमें 12, 14 से 21 तक बाहरी लोगों से प्यार करने और उनकी सेवा करने पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इनमें से कुछ छंदों में साथी विश्वासियों के साथ साथ वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो बाहर हैं। तो मैं पहले इस बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन श्लोक 14 और फिर 17 से 21 वास्तव में दुश्मनों के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि श्लोक 15 और 16 किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। उन लोगों के साथ आनंद मनाओ जो आनंदित हैं। रोने वालों के साथ रो। वह अत्यधिक मूल्यवान नैतिकता और प्राचीनता भी थी। वास्तव में यहूदिया में अब तक यह माना जाता था कि यदि कोई रब्बी किसी बारात में व्याख्यान दे रहा होता तो वे अपना स्कूल छोड़ देते थे और वे सभी जाकर बारात में शामिल हो जाते थे। यदि कोई शवयात्रा वहां से गुजर रही होती तो वे भी ऐसा ही करते और शवयात्रा में शामिल हो जाते। रोने वालों के साथ रोना, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाना। और वह कहता है, नीचों की संगति करो। फिर यह स्वयं से अधिक दूसरों का सम्मान करने का हिस्सा है। यदि आप नीचों की संगति करते हैं तो आप अपना सम्मान नहीं चाह रहे हैं। मैं अक्सर ल्यूक अध्याय 2 के बारे में सोचता हूं, जहां ऑगस्टस वह है जो आदेश भेजता है, हर किसी को वापस जाना चाहिए जहां उन पर कर लगाया जा सकता है। जनगणना के लिए सभी को वहां वापस जाना चाहिए जहां उनके पास संपत्ति है। तो ऑगस्टस ऐसा लगता है जैसे वह कथा को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वास्तव में कथा ऑगस्टस के बारे में नहीं है। वास्तव में यह कथा ईश्वर की योजना और ऑगस्टस से भी महान राजा के बारे में है। ऑगस्टस को बहुत समय हो गया है, उसका अंतिम संस्कार राख में कर दिया गया था, लेकिन हमेशा राज करने वाले सच्चे और शाश्वत राजा का जन्म उसी दिन बेथलेहम में हुआ था। और आपके पास ल्यूक अध्याय 2 में यह विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ यह शक्तिशाली सम्राट है जो एक महल से शासन करता है और वहाँ मंदिर हैं जो सम्राट की पूजा करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं और सम्राट की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह पैक्स रोमाना, रोमन शांति का लाने वाला है, जो था किसी भी मामले में एक कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं, जैसा कि पार्थिया जानता था और जर्मन जानते थे इत्यादि। उनके समय में ब्रिटेन के लोग अभी भी जानते थे और निश्चित रूप से न्यूबियन भी जानते थे। उन्हें शांति लाने वाले के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें विश्व के उद्धारकर्ता और विश्व रोमन जगत के परोपकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। उनका जन्मदिन वास्तव में रोमन दुनिया भर में मनाया जाता था। ठीक है, यहाँ आपके पास सच्चे राजा का जन्मदिन है और वह जानवरों को चराने वाले कुंड में पैदा हुआ है और उसकी महानता का जश्न मनाने के लिए उसके पास कोई मंदिर या सांसारिक गायक नहीं है, बल्कि इसके बजाय आपके पास स्वर्गीय गायक हैं जो कहते हैं, पृथ्वी पर शांति, मानवता के प्रति सद्भावना और आज आपके लिए एक सच्चा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, मसीह प्रभु, सीजर प्रभु नहीं जैसा कि उसे उन मंदिरों में बुलाया जाएगा, बल्कि मसीह प्रभु है। और फिर भी वह कहां पैदा हुआ है? उनका जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि पशुओं को चराने वाले एक कुंड में हुआ है। उनका जन्म हुआ है और जिन लोगों पर इसका खुलासा हुआ है वे चरवाहे हैं जिन्हें निम्न वर्ग का माना जाता था। अधिकांश प्राचीन शहरी संस्कृति में बाहरी लोग और अक्सर कृषि संस्कृति में भी पुराने नियम में उनका सम्मान किया जाता था, लेकिन कभी कभी रब्बियों द्वारा निश्चित रूप से उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। रोमन शहरी संस्कृति में उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है इत्यादि। दीन और टूटे हुए लोगों के बीच भगवान की उपस्थिति पाई गई, और मुझे लगता है कि अगर हम ईश्वर की उपस्थिति के लिए तरस रहे हैं, अगर हम दीन और टूटे हुए नहीं हैं, तो हम अक्सर उसकी उपस्थिति को दीन और टूटे हुए लोगों के बीच पाएंगे, न कि शक्तिशाली लोगों के साथ मेलमिलाप के बीच। मेरा मतलब है कि भगवान भी शक्तिशाली लोगों से प्यार करता है, लेकिन विशेष रूप से अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमें टूट जाने और भगवान पर निर्भर रहने के अर्थ से उबरने की जरूरत है। निःसंदेह कुछ लोग जो शक्तिशाली स्थितियों में हैं, वे जानते हैं कि वे वास्तव में ऐसी स्थितियों में हैं जहां लोगों की मदद करने के लिए उन्हें भगवान की मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन वे नीच लोगों के साथ जुड़ते हैं। अपने आप को बुद्धिमान होने का दावा न करें, अध्याय 12 और श्लोक 16। वह इस शब्द फ्रोनुंटेस का उपयोग कर रहा है, वापस आता है और श्लोक 16 में फिर से फ्रोनुंटेस शब्द का उपयोग करता है, फिर फ्रोनिमोई शब्द का उपयोग करता है। वह दिमाग और बुद्धि, सोचने के सही तरीके के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है। आपको अपने बारे में इसी तरह सोचना चाहिए। यह 12.3 जैसी ही क्रिया है, जहां अपने बारे में जितना सोचना चाहिए उससे अधिक ऊंचा मत सोचो। इसलिए हम नीच लोगों की संगति करते हैं और हम अपने आप पर घमंड नहीं करते हैं, बल्कि हम उन उपहारों को पहचानते हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं और हम उनका उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करते हैं। लेकिन 12.14 और 17-21 में वह इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए कि आपको अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन लोगों को आशीर्वाद दो जो तुम पर अत्याचार करते हैं। उन्हें शाप मत दो, बुराई का बदला मत लो, उन सभी को जो अच्छा लगता है उसे ध्यान में रखें। जहां तक यह आप पर निर्भर करता है, सभी के साथ शांति से रहें। अपना बदला मत लो, बल्कि भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ो और अपने दुश्मनों को दोस्त बनाओ। बुराई से मत हारो, परंतु भलाई करके बुराई पर विजय पाओ। अगले सत्र में हम बाहरी लोगों के प्रति इस व्यवहार के बारे में अधिक बात करेंगे और फिर अध्याय 13 श्लोक 1-7 में जाएंगे, जहां यह राज्य के संबंध में समग्र रूप से कॉरपोरेट समूह इकाई के संबंध में कैसे व्यवहार करना है इसके बारे में बात करता है, और फिर अध्याय 13 श्लोक 8-10 जहां वह एक सारांश देता है जिसमें यह सब शामिल है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 10:33 से 12:13 पर सत्र 12 है।